आप सबका इस्कॉन के श्री श्री राधा गोकुलानंद मंदिर में स्वागत है। पिछले रविवार को जो प्रवचन हुआ था उसमें चातुर्मास की चर्चा हुई थी और चातुर्मास की महिमा, इसका महात्म्य, कैसे इसका हमें पालन करना चाहिए और ये भी चर्चा हुई थी कि किस तरह से भगवान श्री कृष्ण के कलयुग के रूप श्री चैतन्य महाप्रभु इन्होंने चातुर्मास कैसे मनाया। उस दौरान ये चर्चा हुई थी कि संन्यास लेने के तुरंत बाद चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत गए तीर्थ यात्रा के लिए और वहां पर कई तीर्थ स्थानों में जाकर वहां पर लोगों को उन्होंने भक्त बनाया और श्री रंगम में भी वो रुके थे, जहां पर श्री रंग या रंगनाथ देव इनका प्रसिद्ध मंदिर है। वहां पर आपको याद होगा वो रहे थे एक बहुत ही विद्वान ब्राह्मण जो कि बड़े भक्त भी थे, जिनका नाम था, किसी को पता है? कल पिछले हफ्ते चर्चा की थी, वेंकट भट्ट। वेंकट भट्ट श्रीरंग के श्री वैष्णव संप्रदाय के ब्राह्मणों में से थे और उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को निमंत्रण दिया था कि मेरे घर में प्रसाद पाने के लिए आप आइए, और चैतन्य महाप्रभु ने निमंत्रण स्वीकार किया था। और उस समय वेंकट भट्ट ने उनसे निवेदन किया था कि अभी चातुर्मास आरंभ हो चुका है तो कृपया आप मेरे निवास स्थान पर इन चार महीनों के लिए रह जाइए, और चैतन्य महाप्रभु ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया था। आपको यह भी याद होगा कि ये चर्चा भी हुई थी कि वेंकट भट्ट, उनका एक छोटा लड़का था जिनका नाम था गोपाल भट्ट, और वो भी उस समय घर में थे। और ये छोटा सा बालक जो है उसने बहुत अच्छी तरह से चैतन्य महाप्रभु का संग किया, और यही गोपाल भट्ट आगे चल के कौन बने? गोपाल भट्ट गोस्वामी, जो कि छह गोस्वामियों में से एक हैं। कई रविवार पहले रघुनाथ दास गोस्वामी, इनकी चर्चा हुई थी, जो कि षड गोस्वामियों में से छह गोस्वामियों में से एक हैं। कल सोमवार श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी इनका तिरुभाव दिवस है, जिस दिन पर उन्होंने समाधि ली थी वृंदावन में, इसलिए आज हम गोपाल भट्ट गोस्वामी के बारे में चर्चा करेंगे, उनके जीवन के बारे में, जिससे कि हम बहुत शिक्षा और प्रेरणा प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे महान भक्तों के जीवनी और गुणगान करने से और उनके बारे में सुनने से हमारा हृदय शुद्ध होता है और इन महान वैष्णवों की कृपा हमें प्राप्त हो सकती है और हमें भी भक्ति प्रदान कर सकते हैं ये वैष्णव अपने अपने स्थान से। तो गोपाल भट्ट जिस समय के चैतन्य महाप्रभु उनके घर में रहे थे वो केवल 7 साल के थे, छोटे बालक, लेकिन पूरी तरह से उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के संग का लाभ उठाया। जब वेंकट भट्ट ने चैतन्य महाप्रभु को घर में निमंत्रण किया था और चैतन्य महाप्रभु पहली बार आए थे तो वेंकट भट्ट ने महाप्रभु के चरणों को धोया था और उस चरण जल से उसका उन्होंने पान किया था, अपने परिवार के सारे सदस्यों को ये जल उन्होंने पिलाया था और फिर बाकी सबके ऊपर छिड़क दिया था। उस समय बालक गोपाल भट्ट ने भी ये जल का पान किया। किसी महान वैष्णव के चरण जल को प्राप्त करके बहुत लाभ हो सकता है। तो भगवान श्री कृष्ण का चरण जल प्राप्त करने से और कितना लाभ होगा। तो जब गोपाल भट्ट ने ये जल का पान किया तो तुरंत उनके अंदर कृष्ण प्रेम जागृत हो गया और भाव विभोर होकर फिर वो वहां पर बेहोश गिर पड़े और सारे भक्ति के लक्षण उनके शरीर में प्रकट हो गए उसी समय से। और फिर गोपाल भट्ट इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु का संग कभी भी नहीं छोड़ते थे। जब भी वो स्नान के लिए जाते थे वो साथ में जाते, रंगनाथ मंदिर में दर्शन करने जाते तो वो भी साथ में जाते, जब वो वेंकट भट्ट के साथ में चर्चा करते तो उस समय भी बालक गोपाल वहां बैठ जाते। शायद उनको उस समय कई बातें समझ में नहीं आई हों, थोड़ी बातें समझ में आई हों, लेकिन उन्होंने परवाह नहीं की, केवल बैठे रहे उस संग में। इससे हम समझ सकते हैं कि भक्तों का संग कितना प्रभावशाली है। और जैसे जैसे दिन बढ़ते गए वैसे वैसे बालक गोपाल की आसक्ति चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों के प्रति बढ़ती गई बढ़ती गई। जैसे कि एक छोटा पौधा एक विशाल मजबूत वृक्ष के बराबर बन जाता है, ठीक उसी तरह है बालक गोपाल की श्रद्धा और आसक्ति और प्रेम चैतन्य महाप्रभु के प्रति बढ़ता गया। एक क्षण भी चैतन्य महाप्रभु के बिना वो रह नहीं सकते थे। और जब वेंकट भट्ट ने ये देखा तो बहुत प्रसन्न हो गए। वेंकट भट्ट ने सोचा कि मेरा जीवन धन्य हो जाएगा और इस बालक का जीवन धन्य हो जाएगा अगर ऐसी आसक्ति हुई तो। श्रीमद् भागवत में भी बताया है, महत् सेवन द्वारम आहुर विमुक्तेश। जब किसी महान भक्त के चरणों के प्रति हमारी आसक्ति हो जाती है और हम उनकी सेवा करते हैं तो ऐसे सेवा से हमारे लिए भगवान के धाम का मार्ग खुल जाता है। और अगर साक्षात भगवान एक भक्त के रूप में आए और उनके प्रति तीव्र आसक्ति हो हमारे हृदय में तो हमारे सौभाग्य का क्या कहना। तो वेंकट भट्ट अति प्रसन्न हुए। तो देखिए माता पिता के कर्तव्य क्या होते हैं और माता पिता की भावना क्या होनी चाहिए। सबसे पहली बात, माता पिता को चाहिए कि खुद वो वैष्णवों का संग करें, सबसे पहली बात, और साथ साथ अपने बच्चों को भी महान भक्तों का संग दिलाएं, उनको संग में लाए, भले बच्चे समझे या न समझे, लेकिन वैष्णव संग ये वातावरण इतना प्रबल है, इतना शक्तिशाली है कि एक बार एक छोटे बालक के हृदय में इसका असर पड़ जाए तो इसके हृदय में श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है और श्रद्धा धीरे 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 से सुदृढ़ होकर निष्ठा बन जाती है। निष्ठा मतलब बहुत दृढ़ विश्वास। और वही बालक जब बड़ा हो जाएगा उम्र से तो फिर उसकी भक्ति बहुत मजबूत हो जाएगी, श्रद्धा बहुत तीव्र हो जाएगी। आजकल समस्या क्या है कि चाहे बच्चों के लिए हो या बड़ों के लिए हो, ऐसा वातावरण खराब है सब जगह, घर के अंदर भी घर के बाहर भी, सड़क पे कहां भी जाएंगे आप, सब जगह बहुत बुरा वातावरण है। इसलिए जो भी भक्ति करना चाहते हैं, हालांकि भक्ति में सत्संग में आकर उनकी श्रद्धा बढ़ती है, लेकिन जब बाहर जाते हैं तो श्रद्धा फिर से डामाडोल हो जाती है। श्रद्धा सुदृढ़ होने के लिए बाहर की दुनिया अवसर नहीं देती है। और श्रद्धा अगर किसी की कोमल हो तो बहुत आसानी से वो व्यक्ति भक्ति छोड़ सकता है, या छोड़े भी नहीं लेकिन प्रगति अच्छी गति से नहीं कर सकता है। लेकिन बचपन से किसी बच्चे को ऐसे हमेशा भक्तों के संग में लाया जाए जहां कृष्ण कथा कृष्ण नाम संकीर्तन हो रहा हो, तो ऐसा बच्चा जो है वो भक्ति में बढ़ता जाएगा, उसकी निष्ठा उसकी श्रद्धा सुदृढ़ हो जाएगी। समझ लीजिए कि सारे समाज के बच्चों को ऐसे वातावरण अगर मिले तो फिर सारे समाज की क्या दशा होगी, सारा पृथ्वी लोक जो है वो वैकुंठ बन जाएगा। लेकिन आजकल हम देखते हैं कि जब बच्चे ज्यादा सत्संग में जाते हैं माता पिता चिंतित होने लगते हैं, लेकिन चिंतित नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमेशा लोगों के मन में रहता है कि मेरा बच्चा कुछ बड़ा आदमी होना चाहिए, बहुत पैसा कमाना चाहिए, समाज में उसका नाम होना चाहिए। तो ये सब चीजें भौतिक हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि पैसे की आवश्यकता नहीं है, घर की आवश्यकता नहीं है, शिक्षण की आवश्यकता नहीं है, ये अवश्य है और करना भी चाहिए बच्चे को, लेकिन ये सब चीजें क्षणभंगुर हैं, बहुत कम समय के लिए रहेंगी। अगर किसी व्यक्ति ने इन सब चीजों को प्राप्त कर भी लिया है लेकिन उसका जीवन तो सफल नहीं होता इन चीजों को प्राप्त करने से। अगर वो भगवान की शुद्ध भक्ति प्राप्त करता है तब उसका जीवन सफल हो जाता है। इसलिए माता पिता का कर्तव्य होता है कि वो भी वेंकट भट्ट के पद चिन्हों में चलें और भक्तों के संग में उनके बच्चों को लाए, और जब वो देखते हैं कि बच्चे आसक्त होते हैं ऐसे संग में तो उनको प्रसन्न होना चाहिए, चिंतित नहीं होना चाहिए और सोचना चाहिए कि मेरा जीवन धन्य हो गया। आज अगर मेरा भक्त बन रहा है, मेरा बच्चा भक्त बन रहा है, कितनी अच्छी बात है, नहीं तो बाहर जाके न जाने क्या बन जाएगा। इस प्रकार से बालक गोपाल उनके संग में हमेशा रहे, और वेंकट भट्ट जब ये देखते थे तो उनको बहुत आनंद आता था। जब गोपाल भट्ट को ऐसी कृपा प्राप्त हुई चैतन्य महाप्रभु की, तो उनके हृदय में क्या बीतता था कोई समझ नहीं पाता। एक बार गोपाल भट्ट को अचानक एक अजीब भावना मन में आई, बहुत उदास हो गए, सोचने लगे कि चैतन्य महाप्रभु ये तो स्वयं भगवान कृष्ण है, तो स्वयं भगवान होते हुए ये अभी सन्यास क्यों ले रहे हैं, सन्यास का जीवन अच्छा जीवन नहीं है, ये वैराग्य का जीवन है, तपस्या का जीवन है, इसमें बहुत सारे कठिनाइयां होती हैं, और ऐसी अवस्था में रहकर उन्होंने सर मुंडवा लिया है, उनके कितने लंबे लंबे अच्छे काले बाल थे वो सब उन्होंने काट दिए, अपने परिवार को त्याग दिया, कितना सब कठिनाई है इनके लिए, भगवान है ये, उनको ये सब लेने के लिए क्या जरूरत है। तो ऐसे भावना से वो हमेशा बीच बीच में रोया करते थे, और ये प्रमाण है कि चैतन्य महाप्रभु की कृपा उनके ऊपर हुई थी। एक बार इसी प्रकार से जब वो चिंतन कर रहे थे, ऐसे चिंतन करते करते वो सो गए, और रात को उनको सपना आया, सपने में उनको सारा नवद्वीप धाम दिखाई पड़ा जहां के चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए थे। जिस तरह से भगवान कृष्ण वृंदावन में प्रकट हुए थे, उसी तरह से वही श्री कृष्ण जब कलयुग में आए थे तो वो प्रकट हुए थे नवद्वीप में, जो कि अभी बंगाल में है, और सारा दृश्य उनको दिखाई पड़ा नवद्वीप का, और नवद्वीप के अंदर उन्होंने सपने में देखा कि चैतन्य महाप्रभु हैं, साथ साथ में नित्यानंद प्रभु हैं जो कि बलराम हैं, और अद्वैत आचार्य उनके पार्षद तीनों हरिनाम संकीर्तन कर रहे हैं, और अचानक अद्वैत आचार्य उनके पास में आए और गोपाल के कान में कुछ बोलने जा रहे थे जब सपना टूट गया और वो जाग गए नींद से, और जैसे ही वो जागे तो तुरंत भाग के गए चैतन्य महाप्रभु के पास, उनके चरणों में जाके उन्होंने दंडवत किया, उनके चरण कमलों को पकड़ लिया, और जब ऊपर उन्होंने देखा तो एक अद्भुत दृश्य देखा। उन्होंने एक सन्यासी को नहीं देखा जो कि गौर वर्ण के थे, जिनके हाथ में कमंडलू था, दंडा था, जिनका सर मुंडवाया हुआ था, जिन्होंने गहरे वस्त्र पहने थे। ऐसे व्यक्ति को उन्होंने नहीं देखा। क्या देखा उन्होंने? सुंदर श्याम सुंदर गोविंद का रूप देखा, त्रिभंग ललित। तीन जगह उनका दिव्य शरीर बका हुआ था, वो सुंदर बांसुरी बजा रहे थे, गले में वैजयंती माला थी, कौस्तुभ मणि और सुंदर आभूषण इत्यादि सहित भगवान श्री कृष्ण अति सुंदर दिखाई पड़ रहे थे। जब बालक गोपाल ने ये भगवान का दर्शन किया तो भाव विभोर होकर गिर पड़े। उनको विश्वास नहीं हुआ कि वो क्या देख रहे हैं, उनको समझ में नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। और जैसे ही भगवान कृष्ण ने अपना दर्शन इस रूप में दिया, फिर थोड़े से क्षण बाद फिर से उन्होंने और एक अपना रूप दिखाया, रूप बदल दिया। और कौन सा रूप दिखाया? उन्होंने अपना नवद्वीप का रूप दिखाया। मतलब चैतन्य महाप्रभु के लीला में उन्होंने सन्यास लेने के पहले जो रूप धारण किया था, वो रूप जिसमें उनके लंबे काले बाल थे, जिस रूप में वो अपने भक्तों के संग नवद्वीप और नदिया के सड़कों पर जाकर हरिनाम संकीर्तन करते थे हाथ उठाकर, और सब जीवों को बोलते थे जीव जागो तुम हरिनाम संकीर्तन में भाग ले लो, ये अनमोल धन ले लो। उन्होंने वो गौरांग महाप्रभु का वो सुंदर रूप देखा और भी आश्चर्यचकित हो गए बालक गोपाल, और भी भाव विभोर होकर गिर पड़े। और फिर थोड़ी देर में पुनः चैतन्य महाप्रभु का वो सन्यासी रूप इस बालक के सामने प्रकट हुआ, और भगवान चैतन्य महाप्रभु ने गोपाल भट्ट को आलिंगन किया और दोनों के आंखों से प्रेम के अश्रु बह रहे थे, और दोनों ने एक दूसरे को इन आंसुओं से भिगो दिया। इस प्रकार से बालक गोपाल का सौभाग्य था कि उन्होंने ऐसे ऐसे अनुभव किए, ऐसी कृपा प्राप्त की चैतन्य महाप्रभु का। और जब ये दर्शन समाप्त हुआ तो चैतन्य महाप्रभु ने गोपाल को बुलाया और कहा, देखो गोपाल, तुम्हारे सारे जीवन के लिए मैं तुम्हें आदेश देता हूं। जब तुम्हारे माता पिता बूढ़े हो जाएंगे, जब तक कि उनका देहांत नहीं होता, तब तक तुम यहां रहना, अच्छी तरह से उनकी सेवा करना, क्योंकि वो भी महान वैष्णव है, वो भी मेरे भक्त है। और जब वो मेरे धाम को लौट कर चले जाएंगे मृत्यु के बाद, तब तुम वृंदावन चले जाना, वहां मेरे प्रिय भक्त और पार्षद रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी हैं, और वहां पर जाकर उनके आप पार्षद बनो, उनके भाई की तरह उनके साथ में रहो, और प्रचार के कार्य में आप उनका संग दे दो, और जो भी वो पुस्तक छापेंगे और पुस्तक लिखेंगे, आप भी साथ साथ उनके पुस्तक लिखना, और इनके सारे पुस्तकों को लेकर आप जगह जगह बांट देना, क्योंकि देश के अलग अलग कोने से भक्त आएंगे आपके शरण लेने के लिए, वो तुम्हारे शिष्य बनेंगे, और इन शिष्यों के माध्यम से तुम सब जगह इन गोस्वामियों के संदेश को फैलाना, कृष्ण भक्ति का संदेश फैलाना। तो इस प्रकार से गोपाल भट्ट को बचपन की अवस्था में, 7 साल की अवस्था में ही उनको सारे जीवन का एक आदेश मिल गया था, आज्ञा मिल गई थी। और उसके बाद चैतन्य महाप्रभु का वार्तालाप हुआ था, एक संवाद हुआ जो बहुत प्रसिद्ध है वेंकट भट्ट के साथ में, क्योंकि वेंकट भट्ट समझते थे कि नारायण ही आदि रूप है भगवान के। और चैतन्य महाप्रभु ने उनको समझाया कि नारायण भी भगवान श्री कृष्ण के अंश अवतार हैं, वो भी पूर्ण भगवान नहीं है, पूर्ण भगवान आदि पुरुष तो भगवान श्री कृष्ण है वृंदावन के, और नारायण भी भगवान कृष्ण से उत्पन्न होते हैं। ये सुंदर संवाद हुआ जो काफी लंबा है, और जब ये संवाद हो गया तो नारायण वेंकट भट्ट वो भी भगवान कृष्ण के भक्त बन गए। पहले तो कृष्ण भक्त थे ही, लेकिन नारायण को प्रमुख मानते थे। अब वो समझ गए। वेंकट भट्ट के और दो भाई थे जिनका नाम था तिरुमल्ल भट्ट और प्रबोधानंद। ये तीनों भाई बड़े महान वैष्णव और विद्वान ब्राह्मण थे। तो तीनों ने चैतन्य महाप्रभु का संग का लाभ पूरी तरह से उठाया। और जब चातुर्मास से समाप्त हो गया तो चैतन्य महाप्रभु वहां से निकल पड़े और दक्षिण भारत की यात्रा में आगे चल पड़े। उस समय ये तीनों भाई और साथ साथ गोपाल भट्ट बड़े शोकग्रस्त हो गए, बहुत दुखी थे। वो भी चैतन्य महाप्रभु के संग जाना चाहते थे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने किसी न किसी तरह से उनको समझाया बड़े मुश्किल से, और उनको आदेश दिया कि आप यहीं पर रहो। और इस तरह से गोपाल भट्ट जो है वो वहीं पर रह गए। और ऐसे जब चैतन्य महाप्रभु के जाने के बाद गोपाल भट्ट ने अपने माता पिता की सेवा बड़े अच्छे ढंग से की। माता पिता भी पूरे दिन कृष्ण भक्ति में लगे रहते और गोपाल भट्ट भी इस तरह से कृष्ण भक्ति करते रहते। उधर उन्होंने अपने चाचा प्रबोधानंद सरस्वती से दीक्षा ग्रहण की, उनको गुरु स्वीकार किया। प्रबोधानंद सरस्वती बड़े विद्वान थे और उन्होंने बालक गोपाल भट्ट को सारे शास्त्रों का ज्ञान दिया और खास करके भक्ति शास्त्रों का। और इस तरह से गोपाल भट्ट बहुत ही कम समय में बड़े विद्वान हो गए और जगह जगह उनका यश फैलता गया कि इतना विद्वान है ये युवक। इस प्रकार से अपने पढ़ाई, अपनी भक्ति, अपनी सेवा सब कुछ साथ साथ आगे वो करते रहे। एक बार वेंकट भट्ट ने अपने पुत्र गोपाल भट्ट को बुलाया और कहा कि हे पुत्र, अभी तुम्हारे वृंदावन जाने का समय आ गया है। चैतन्य महाप्रभु ने तुम्हें आदेश दिया था कि तुम्हें वृंदावन जाके रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी का संग करना है, तो अब समय आ गया है, तुम आगे चल पड़ो। और थोड़े समय बाद में दोनों वेंकट भट्ट और उनकी पत्नी ने अपना प्राण त्याग दिया। वो भगवान कृष्ण के धाम में लौट कर चले गए और फिर गोपाल भट्ट आगे वृंदावन में चले गए, जैसे कि चैतन्य महाप्रभु का आदेश था। जब वे वृंदावन में पहुंचे तो वहां पर सब गोस्वामियों को पहले से ही पता चल गया था, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने संदेश भिजवाया था रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी को कि देखो, गोपाल भट्ट नाम के मेरे एक बहुत अच्छे भक्त और शिष्य आने वाले हैं, उनको आप साथ में रखना, आपका भाई समझना उसको। और इस प्रकार से जब गोपाल भट्ट वहां पर पहुंचे तो रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, कृष्णदास कविराज गोस्वामी, भूगर्भ गोस्वामी, लोकनाथ गोस्वामी, काशीश्वर इत्यादि ये सब महान वैष्णव वहां पर रहते थे और उन्होंने बड़े हृदय से गोपाल भट्ट का स्वागत किया और अपने ही परिवार में जैसे उन्होंने उनको स्वीकार कर लिया। और गोपाल भट्ट बड़े खुश हुए इसको देखकर, इसको समझकर कि कैसे इन गोस्वामियों ने मुझे स्वागत किया है। ठीक उसी तरह से हमें भी नए भक्तों का स्वागत करना चाहिए। जब भक्त आते हैं भक्त समाज में तो हमें भी उनका हर्ष उल्लास से स्वागत करना चाहिए। हालांकि रूप गोस्वामी इतने वरिष्ठ थे, फिर भी उन्होंने गोपाल भट्ट गोस्वामी को इतने प्रेम से स्वागत किया। तो षड गोस्वामियों के और महान वैष्णवों के परस्पर व्यवहार से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं कि हमें परस्पर कैसे आपस में व्यवहार करना चाहिए। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। चैतन्य महाप्रभु और उनके भक्तों ने आपस में कैसे व्यवहार किया, ये चैतन्य चरितामृत और अन्य ग्रंथों में हम पढ़ सकते हैं। तो ये हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि भक्तों के संग के बिना हम भगवान कृष्ण की भक्ति नहीं प्राप्त कर सकते हैं। और अगर हम भक्तों के संग में रहना नहीं जानते हैं, किस तरह से रहना चाहिए, कैसे भक्तों के संग का लाभ उठाना चाहिए, अगर हम ये नहीं समझते हैं तो फिर भक्तों के संग में रहकर पूरे पूरे मौके का फायदा हम उठा नहीं पाएंगे। तो चैतन्य महाप्रभु और उनके भक्तों की लीलाओं को सुनकर हम ये बहुत महत्वपूर्ण बात सीख सकते हैं, जान सकते हैं। और वहां पर गोपाल भट्ट गोस्वामी ने, वहां पर वो गोस्वामी बने, उन्होंने अपने सारे जो अच्छे अच्छे कपड़े थे जो भी, उनको त्याग दिया और केवल एक कौपीन और एक सादा वस्त्र, फटा हुआ वस्त्र उन्होंने ग्रहण किया, जैसे कि वृंदावन के गोस्वामी ने किया था। त्यक्त्वा तूर्णमशेष मंडलपति श्रेणीं सदा तुच्छवत्। ये हालांकि अलग अलग उच्चे परिवार से आए थे षड गोस्वामी, लेकिन फिर भी उन्होंने एक साधारण जीवन स्वीकार किया। भूतवा दीन गणेश कौ करुण या कौ पीन कंथाश्रित। उन्होंने साधारण व्यक्तियों के संग में रहना पसंद किया जो भक्त थे, लेकिन वहां पर एक सादा कपड़ा, फटा हुआ कौपीन और कंथ पहनकर वो रहते थे। यह है उनका जीवन, कितना सरल जीवन। जो व्यक्ति भक्ति में प्रगति करना चाहता है उसको सरल जीवन जीना चाहिए। ये बाहरी चीजों के प्रति ज्यादा आसक्त नहीं होना चाहिए। उधर जगन्नाथपुरी में चैतन्य महाप्रभु लौटकर आए थे अपनी दक्षिण की यात्रा से, और लौटने के बाद ठीक उस समय जबकि गोपाल भट्ट वृंदावन पहुंचे थे, वहां पर चैतन्य महाप्रभु चिंता करने लगे कि अरे गोपाल भट्ट पहुंचा कि नहीं अभी वृंदावन। वैसे चैतन्य महाप्रभु तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण है, वो तो सब कुछ जानते हैं, लेकिन फिर भी वो एक मनुष्य की लीला कर रहे हैं। तो फिर वो अपने भक्त गदाधर पंडित के घर में गए थे किसी काम से। वहां पर सारे भक्त एकत्र थे और अचानक वहां वृंदावन से एक दूत आया एक पत्र लेकर, जो कि रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी ने लिखा था। चैतन्य महाप्रभु ने जब यह पत्र पढ़ा तो बहुत खुश हुए, क्योंकि इस पत्र ने इन्होंने लिखा था कि गोपाल भट्ट गोस्वामी यहां पर आ गए हैं और हमें बड़ी प्रसन्नता हुआ है इनको देखकर। भक्तों में से शिरोमणि है ये, एक अनमोल रत्न के बराबर हैं। इनके गुण कितने सुंदर हैं, कितने बढ़िया भक्त हैं ये। हमने गोपाल भट्ट गोस्वामी को हमारे परिवार में स्वीकार किया है, हमारे भाई की तरह वो हमारे साथ में रहेंगे। तो चैतन्य महाप्रभु ने यह संदेश पढ़ के वो बड़ी प्रसन्नता की अनुभूति की, और इस प्रकार से उन्होंने गोपाल भट्ट गोस्वामी को खास उन्होंने भेंट, एक उपहार भेजा। पहले तो थोड़ा प्रसाद भेजा, साथ साथ दो विशेष भेंट दिए। एक उनका स्वयं का कौपीन कपड़ा, और दूसरा एक चौकी, मतलब एक बैठने का जो स्थान है जहां पर चैतन्य महाप्रभु बैठकर भगवान की सेवा करते थे, पूजा करते थे, या कभी कभी बैठ के जप करते थे। तो उस चौकी को और उस कौपीन को उन्होंने एक दूत के हाथ गोपाल भट्ट गोस्वामी को भेज दिया। जब गोपाल भट्ट गोस्वामी ने यह स्वीकार किया, उनकी खुशी की सीमा नहीं रही, और उन्होंने बड़े सावधानी से इन चीजों को रखा और भक्ति भाव से रोज इनकी पूजा करते थे, ये समझते हुए कि ये चैतन्य महाप्रभु से अभिन्न है। इसका मतलब है कि भगवान की जो सामग्री है वो भी भगवान की तरह ही हमें उसे संभाल के रखना चाहिए। तो भगवान की सामग्री क्या है? हमारे दैनिक जीवन में जब हम भक्ति करते हैं तो भगवान की सेवा तो करते हैं, लेकिन इतने सारे सामग्रियों की सहायता से, जैसे कि समझ लीजिए ये करताल है, या मृदंग है, या वो ग्रंथ है, या कितनी सारी चीजें हैं, भगवान के कपड़े हैं, भगवान के गहने हैं, ये सब भगवान की सामग्री है, ये बहुत पवित्र चीजें हैं, इसलिए इनको बड़े सावधानी से हमें रखना चाहिए। कभी ऐसे नहीं करना चाहिए कि करताल कहीं इधर फेंक दिया, किताब कहीं उधर फेंक दिया, इन चीजों को कभी फेंकना नहीं चाहिए। अगर किसी को देना है तो दूसरों के हाथ में बड़े अच्छे ढंग से देना चाहिए, सम्मान से देना चाहिए। कहीं किताब है, कोई भक्त कभी ऐसे यू फेंक दे, पकड़ लो, किसी करताल किसी ने ऐसे फेंक दिया, नहीं, बड़े सावधानी से प्रेम से उसको सम्मान से देना चाहिए। और साथ साथ इन चीजों को कोई गंदे जगह में नहीं रखना चाहिए, खास करके इनका स्पर्श जमीन से नहीं करना चाहिए। जैसे जो ग्रंथ होते हैं या जो करताल होता है, खाली जमीन पे नहीं, किसी आसन के ऊपर, किसी ऐसे जगह पर जहां किसी के पैरों का स्पर्श न हो, जहां पर हम बैठते नहीं हैं, वहां भी ऐसी चीजें नहीं रखनी चाहिए। जैसे हमारे जप की माला है इत्यादि, बड़े सुरक्षित अच्छे ढंग से हमें रखना चाहिए उनको। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी ने जान लिया कि वास्तव में चैतन्य महाप्रभु का ये प्रसाद है और महाप्रभु से अभिन्न है ये, इसे रोज इन दो चीजों की पूजा किया करते थे। आगे चल के जब उन्होंने एक मंदिर का निर्माण किया जिसका नाम है राधा रमन मंदिर, उस समय भी उन्होंने ये पूजा के स्थान में रखा। और आज भी 450 साल बाद वही कौपीन और वही चौकी वहां पर है, और आज भी पुजारी जो हैं वहां के, वो इन दोनों की सेवा करते हैं, उपासना करते हैं। जब भगवान कृष्ण को भोग चढ़ाते हैं, उस साथ साथ में वो इस चौकी को और कौपीन को भी उनकी सेवा करते हैं। इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु की कृपा गोपाल भट्ट गोस्वामी ने प्राप्त की। जब रघुनाथ दास गोस्वामी की चर्चा हो रही थी, आपको याद होगा कि चैतन्य महाप्रभु ने भी विशेष भेंट दी थी रघुनाथ दास गोस्वामी को। आपको कोई याद है क्या भेंट दिया था? शालिग्राम नहीं, गोवर्धन शिला। गोवर्धन शिला दी थी जो कि स्वयं चैतन्य महाप्रभु पूजते थे। और क्या दिया उस गोवर्धन शिला के साथ में? एक गुंजमाला। गुंजमाला श्रीमती राधा रानी का प्रतीक है, और गोवर्धन शिला ये तो भगवान श्री कृष्ण है। इस तरह से रघुनाथ दास गोस्वामी ने समझ लिया था कि चैतन्य महाप्रभु ने मुझे राधा कृष्ण के चरणों का आश्रय दे दिया है। तो उसी प्रकार से गोपाल भट्ट गोस्वामी के ऊपर भी उन्होंने ये कृपा की, और निजी उनकी चौकी और उनका कौपिन उन्होंने उनको भेंट में दे दिया। इस प्रकार से वहां पर रहे गोपाल भट्ट गोस्वामी वृंदावन में, और वहां पे जो वैष्णव हैं उनको वो हमेशा चैतन्य महाप्रभु के दक्षिण भारत की यात्रा की लीलाएं सुनाते थे, क्योंकि और किसी को पता नहीं था कि चैतन्य महाप्रभु ने दक्षिण भारत में किया क्या, कहां कहां गए। तो स्वयं गोपाल भट्ट गोस्वामी वहां पर श्रीरंगम में थे, 4 महीने पूरे महाप्रभु के संग में रहे, इसलिए उन्होंने बड़े विस्तार में अन्य वैष्णवों को सुनाया चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं श्रीरंगम में। और इस तरह से सारे वैष्णव बड़े आनंदित हो गए। और उसके बाद में एक बहुत अद्भुत घटना हुई। एक दिन ऐसा हुआ कि गोपाल भट्ट गोस्वामी नेपाल गए थे, जिस स्थान को आज नेपाल कहते हैं। पहले के जमाने में तो सब कुछ भारतवर्ष ही था, आज सब अलग अलग देश हो गए हैं, विभाजन हो गया है। तो नेपाल में एक नदी है जिसको गंडकी नदी कहते हैं। आपने नाम सुना है गंडकी नदी का? ये गंडकी नदी क्यों महत्वपूर्ण है खास करके भक्ति में, कोई बता सकते हैं? तुलसी महारानी से के लीला से संबंधित है, वहां से शालिग्राम शिला मिलते हैं। आप सबने शालिग्राम का नाम सुना है? शालिग्राम भगवान विष्णु का रूप है, शिला रूप, पत्थर रूप। और पहले के जमाने से ऐसी प्रथा चलती आई है कि हरेक ब्राह्मण के घर में शालिग्राम शिला अवश्य होना चाहिए, और हरेक ब्राह्मण को शालिग्राम शिला की उपासना सेवा रोज करनी चाहिए। तो शालिग्राम शिला स्वयं भगवान विष्णु का रूप है, और ये शालिग्राम शिला सारे ब्रह्मांड में केवल एक जगह मिलते हैं और वो है इस गंदकी नदी में। और ये शालिग्राम शिला भी अलग 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 तरह के होते हैं। ये शालिग्राम शिला के अंदर अगर आप उस शालिग्राम शिला को खोलें काटकर, तो अंदर आपको अलग अलग चक्र दिखाई पड़ेंगे, अलग अलग लक्षण निशाने दिखाई पड़ेंगे, जिससे आप पहचान पाएंगे कि किस प्रकार का शालिग्राम शिला है। और ऐसे कई व्यक्ति होते हैं जो इस बात में बड़े प्रवीण होते हैं पहचानने के लिए कि ये किस तरह का शालिग्राम शिला है। बड़े अद्भुत होते हैं शालिग्राम शिला। और इस प्रकार से जब वो गंडकी नदी गए थे गोपाल भट्ट गोस्वामी, वो स्नान कर रहे थे वहां पर, और स्नान के लिए उन्होंने अपना कमंडलू जल के अंदर डाला, और जैसे जल से बाहर निकाला कमंडलू तो अचानक उन्होंने देखा कि इस कमंडलू के अंदर थोड़े शालिग्राम शिला अचानक आ गए। पानी में हुए होंगे और फिर उन्होंने पानी में कमंडलू डाल दिया था, तो पानी में रहे थे तो कमंडलू में आ गया। जब उन्होंने उठाए तो देखा कि पूरे 12 शालिग्राम शिला है। तो फिर से उन्होंने शालिग्राम शिला जल में अर्पण कर दिए, फिर से कमंडलू उन्होंने डाला, फिर से देखा कि वही 12 शालिग्राम शिला फिर से आ गए, फिर से उन्होंने पानी में डाल दिया। तीसरे बार उन्होंने अपने कमंडलू को पानी में डाला और फिर से उन्होंने देखा कि वही 12 शालिग्राम शिला आ गए। तब उन्होंने समझ लिया कि ये भगवान की इच्छा है, ये कोई भगवान की खास योजना है। तब उन्होंने इन 12 शालिग्राम शिलाओं को स्वीकार किया और एक कपड़े के थैली में लगाकर अपने गले से उन्होंने उस थैली को लटकाया। और उसके बाद हर दिन गोपाल भट्ट गोस्वामी इन शालिग्राम शिलाओं की भक्ति भावना से पूजा और सेवा किया करते थे। इस तरह से काफी समय बीत गया। एक बार ऐसे हुआ कि एक व्यापारी वहां वृंदावन में आया। वह व्यापारी भगवान कृष्ण का बड़ा अच्छा भक्त था, उसका हृदय बड़ा उदार था, वह भगवान श्री कृष्ण और उनके भक्तों की सेवा करना चाहता था। तो 6 गोस्वामियों के बारे में उस व्यापारी ने सुना था, तो वह आए गोपाल भट्ट गोस्वामी के पास और उसने गोपाल भट्ट गोस्वामी को बहुत सारे भेंट दिए भगवान कृष्ण की सेवा के लिए। और ये भेंट क्या थे? भगवान कृष्ण के मूर्ति के लिए उन्होंने सारे आभूषण उनको भेंट दिए, जैसे कि उनका मुकुट और नाना प्रकार के गहने, कपड़े, श्रृंगार के पदार्थ इत्यादि। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी ने इनको खुशी से स्वीकार किए, लेकिन उनके मन में ये इच्छा थी कि इतने अच्छे अच्छे सामग्री हैं, इतने मूल्यवान चीजें हैं, लेकिन मेरे पास तो केवल गोल शालिग्राम शिला है। जो गोल शिला है उनको मैं इतनी अच्छी तरह से सजा नहीं सकता हूं इतने ऐसे अच्छे गहनों से। फिर एक दिन ऐसे हुआ 1542 में नरसिंह चतुर्दशी का दिवस था और उस समय गोपाल भट्ट गोस्वामी वो अपनी शालिग्राम शिलाओं के सामने बैठे थे, उनकी सेवा कर रहे थे और बड़े भाव विभोर होकर उनके मन में वो विचार कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे कि हे भगवान, अभी इतने सारे अच्छे अच्छे गहने ये व्यापारी ने मुझे भेंट दिए हैं आपकी सेवा के लिए, लेकिन आपका रूप ऐसे है केवल गोल शिला है, तो मैं इनका प्रयोग अच्छी तरह से आपकी सेवा में नहीं कर पा रहा हूं। तो ये थोड़ा बहुत संकोच या कहिए शोक उनके मन में था। फिर वो सो गए रात को और जब सुबह उठे और अपनी शालिग्रामों की सेवा करने के लिए आए स्नान करने के बाद, तो क्या देखते हैं कि उन 12 शालिग्राम शिलाओं में से जो एक था, जो दामोदर शिला कहलाता है, उसका रूप का परिवर्तन हो गया था। अब वो शिला केवल एक शिला नहीं रही, एक सुंदर मूर्ति बन गई थी भगवान कृष्ण की, जो कि 12 इंची थी, इतनी ऊंची, छोटी थी मूर्ति लेकिन अति सुंदर। आश्चर्यचकित हो गए। और इस वर्णन को आगे बढ़ाने के पहले एक छोटी सी बात आपसे कहना चाहते हैं। जब हम भगवान के अर्चक विग्रह की ऊंचाई लंबाई चौड़ाई वगैरह हम किसी को बताना चाहते हैं तो हम कैसे हाथों का इशारा करते हैं? अगर मान लीजिए आपको बताना है कि कोई साधारण वस्तु है, हमने आपको पूछा कि आपके पास जो लकड़ी है वो कितनी लंबी है, आप क्या कहेंगे? हाथों को कैसे बनाएंगे? हाँ, इतनी लंबी है, इतना लंबा, इतना चौड़ा है। लेकिन भगवान कृष्ण की मूर्ति, उनकी ऊंचाई कितनी है आप कैसे बताएंगे? हम ऐसे नहीं कहते, ऐसे करते हैं। क्यों? दोनों हाथों को, ऊपर के हाथ को ऊपर की ओर, नीचे के हाथ को नीचे की ओर। क्यों? कोई बता सकते हैं क्यों हम ऐसे नहीं करते कि भगवान कृष्ण की मूर्ति इतनी है, हम ऐसे करते हैं? इसका कारण क्या हो सकता है? क्योंकि भगवान का वास्तव में अंत नहीं है, वो तो अनंत है। ऐसे किया इसका मतलब अनंत है, ऐसे किया तो बस उतने ही हो गए, इसलिए हम ऐसे करते हैं। इसका मतलब है हम बताते हैं कि हालांकि भगवान अनंत हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने भक्तों के ऊपर कृपा करके एक अर्चक विग्रह का रूप धारण किया है जो कि इतना लंबा है या इतना ऊंचा है। तो खैर, राधा रमन की मूर्ति केवल 12 इंच की थी, 1 फुट, लेकिन अति सुंदर। और उस समय वो इतने खुश हुए कि सब जगह जाके उन्होंने सबको बताया कि देखो देखो भगवान कृष्ण की कृपा क्या हो गई। और रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी और अन्य जो गोस्वामी थे सब वहां जल्दी जल्दी आए। वो आश्चर्यचकित हो गए, विस्मित हो गए कि अरे ये क्या हो गया, दामोदर शीला ने अपने आप को परिवर्तित कर दिया है। और उस समय वहां भगवान के इस विशेष और बहुत सुंदर मूर्ति का नामकरण हुआ और उनके स्वागत के लिए एक बहुत बड़ा उत्सव मनाया गया, जहां पर सारे वृंदावन के निवासी आए, हरिनाम संकीर्तन हुआ, कथा हुई और वहां सबको बड़े मात्रा में प्रसाद बांटा गया। और मूर्ति का नाम क्या रखा गया, कोई बता सकते हैं? राधा रमण, राधा रमण। ये वृंदावन के 7 प्रमुख मंदिरों में से एक है, बहुत महत्वपूर्ण मूर्ति है ये। और इसमें विशेष बात यह है कि अन्य जो भी महत्वपूर्ण मंदिर है वृंदावन के, वह महत्वपूर्ण या छोटे मंदिर जो भी हैं, सब में भगवान कृष्ण के साथ श्रीमती राधा रानी है। जहां भी आप जाइए ज्यादातर, लेकिन राधा रमण यही एक मंदिर है जहां पर केवल कृष्ण अकेले प्रकट हुए। और इसलिए पुजारी जो हैं वो कृष्ण भगवान के साथ में एक मुकुट रखते हैं जो कि श्रीमती राधा रानी के प्रतीक हैं। क्योंकि वृंदावन में केवल कृष्ण अकेले पूजे नहीं जाते, वृंदावन तो श्रीमती राधा रानी का स्थान है। श्रीमती राधा रानी का और एक नाम है वृंदावनेश्वरी, और वृंदावन में भगवान कृष्ण भी श्रीमती राधा रानी के अधीन होते हैं। बड़े बड़े देवी देवता, अनंत कोटि ब्रह्मांड सब कृष्ण के अधीन हैं, लेकिन भगवान कृष्ण श्रीमती राधा रानी के अधीन है। तो इसलिए वो एक मुकुट रखते हैं पास में, और वो श्रीमती राधा रानी के प्रतीक हैं। तो खैर, इस प्रकार से राधा रमण वहां प्रकट हुए। अब राधा रमण मूर्ति की और एक बहुत विशेष बात है, चैतन्य महाप्रभु ने ये शिक्षा दी है कि सारे वेदों को अगर आपको समझना है, जितना भी ज्ञान वेदों में है, गीता समझिए, भागवत समझिए, वेदांत समझिए, 4 वेद समझिए, जो भी है, लेकिन ये सारा वैदिक ज्ञान आप 3 कदमों में समझ सकते हैं। पहला कदम उसको कहते हैं संबंध। संबंध मतलब ये जानना कि मैं कौन हूं, मैं आत्मा हूं, भगवान कौन है, भगवान कृष्ण है, और हमारा संबंध क्या है, हमारा संबंध प्रेम का है, सेवा का है। जीव या आत्मा नित्य भगवान श्री कृष्ण का दास है। ये है संबंध ज्ञान। ये सबसे पहली बात है जो वेदों में सारे शास्त्रों में सिखाई जाती है। और संबंध ज्ञान के जो आचार्य है वृंदावन में वो है सनातन गोस्वामी। और जो मूर्ति सनातन गोस्वामी जिनकी उपासना करते थे वो है मदन मोहन, राधा मदन मोहन। बहुत सुंदर मंदिर भी ये है, मूर्ति भी है। तो वैसे देखा जाए तो राधा मदन मोहन जो हैं, उनके चरण कमल बहुत सुंदर माने जाते हैं, अति सुंदर। जितने भी भगवान श्री कृष्ण की मूर्तियां हैं वृंदावन में, राधा जो मदन मोहन जी की मूर्ति है उनके चरण कमल जितने सुंदर हैं उतने और किसी भी विग्रह की चरण कमल नहीं है, सबसे सुंदर। और संबंध ज्ञान के आगे जो दूसरा कदम है वेदों के ज्ञान में, उसको अभिधेय कहते हैं कि हमारा संबंध क्या है भगवान श्री कृष्ण के प्रति। तो उस संबंध के अनुसार हमें कार्य करना चाहिए, हमें उनकी सेवा करनी चाहिए। इसको भक्ति कहते हैं। ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। तो जब हम भक्ति के क्रियाकलापों में लग जाते हैं तो इसको अभिधेय कहते हैं। और अभिधेय के आचार्य हैं श्रील रूप गोस्वामी, और उनके आराध्य देव थे राधा गोविंद देव। वो भी बड़े महत्वपूर्ण मंदिर है और विग्रह है। राधा गोविंद की मूर्ति भी बड़ी सुंदर है। वैसे वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण की कोई भी मूर्ति सुंदर है, लेकिन जैसे कि मदन मोहन जी के चरण कमल अति सुंदर हैं, उसी तरह से गोविंद देव इनके जो वक्षस्थल है और सुंदर भगवान श्री कृष्ण के करकमल हैं, हाथ हैं जिनमें कि वो बांसुरी पकड़ते हैं और जिसको बांसुरी बजाते हैं, ये अति सुंदर है। ऐसे वृंदावन में इतना सुंदर मूर्ति कोई नहीं है जहां उनका वक्षस्थल और उनके करकमल इतने सुंदर दिखाई पड़े। तो ये है गोविंद देव। तो संबंध ज्ञान से अभिधेय। अभिधेय मतलब हम भक्ति करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, लेकिन भगवान की सेवा करने से हमें क्या फल मिलेगा, प्रयोजन क्या है? कृष्ण प्रेम। कृष्ण प्रेम या भगवान के प्रति तीव्र प्रेम, ये प्रयोजन है, अंतिम उद्देश्य हमारा भक्ति करने का। और इसलिए तीसरा कदम है प्रयोजन। संबंध से आता है अभिधेय, अभिधेय से आता है प्रयोजन। तो ये तीन महत्वपूर्ण शब्द हैं हम सब के लिए। और प्रयोजन के आचार्य हैं रघुनाथ दास गोस्वामी, और उनके आराध्य देव हैं राधा गोपीनाथ जी। और ये बताया जाता है कि जितने भी वृंदावन में कृष्ण भगवान की मूर्तियां हैं सबके मुखारविंद मुख जो है बहुत सुंदर हैं, लेकिन गोपीनाथ जी की मूर्ति की तरह उनके मुखारविंद का सौंदर्य कहीं नहीं है। सबसे सुंदर मुखारविंद देखना है तो गोपीनाथ जी का। तो इस प्रकार से ये तीन अलग अलग मूर्तियां भगवान श्री कृष्ण के अलग अलग अंगों के सौंदर्य को प्रकट करते हैं। लेकिन आचार्य बताते हैं कि राधा रमण की मूर्ति ये इतनी विशेष है कि राधा रमण की मूर्ति में इन तीनों मूर्तियों के सारे अच्छे गुण हैं। मतलब राधा रमण के चरण कमलों का सौंदर्य मदन मोहन के चरण कमलों का सौंदर्य जैसा है, राधा रमण का वक्षस्थल और उनके करकमल वो गोविंद देव के करकमल और वक्षस्थल की तरह हैं, और राधा रमण का जो मुखारविंद है अति सुंदर, वो गोपीनाथ जी के सुंदर मुखारविंद के बराबर है। तो तीनों को मिलाकर जो सौंदर्य हो सकता है वो राधा रमण की मूर्ति में है। इस प्रकार से ये अति सुंदर विग्रह माना जाता है। इतना छोटा है, दूर से दर्शन करना मुश्किल हो जाता है। कभी कभी भक्त दूरबीन भी ले जाते हैं दर्शन करने के लिए। अच्छा है दूरबीन है तो कोई क्रिकेट मैच फुटबॉल मैच देखने के बजाय कम से कम भगवान का दर्शन करे, उस दूरबीन का भी उद्धार हो जाएगा। नहीं तो दूरबीन किस चीज के लिए इस्तेमाल करते हैं? तो वहां सुंदर दर्शन हो जाता है श्री श्री राधा रमण जी का। 450 साल पहले मुगल बादशाहों ने बार बार वृंदावन के ऊपर आक्रमण किया था और जगह जगह जाकर वो ऐसे सुंदर मंदिरों को तोड़ते थे और विग्रहों को भी तोड़ते थे। इसलिए वहां के जो ब्राह्मण थे, जो पुजारी थे, उन्होंने सारे वहां के जो मूल आदि मूर्तियां हैं वो राजस्थान ले गए, जहां पर जो राजपूत राजा थे उनके संरक्षण में उन्होंने रख दिए ये सारी मूर्तियां। चाहे वो जो ओरिजिनल मूल मूर्तियां हैं जैसे गोविंद देव, गोपीनाथ जी, श्याम सुंदर, राधा विनोद, ये सब मूर्तियां ब्राह्मण उनको ले गए भक्त वहां पर जयपुर और अन्य स्थानों में। लेकिन राधा रमण ये एकमात्र मूर्ति है जो कि वृंदावन में रही, वो नहीं चले गए वृंदावन छोड़कर। और आज भी जो वृंदावन में जो राधा रमण मंदिर में जो राधा रमण की मूर्ति है वो वही मूर्ति है जो कि गोपाल भट्ट गोस्वामी के सामने प्रकट हुए थे। अन्य सारे जो महत्वपूर्ण बड़े मंदिर हैं वहां पर जो मूर्तियां हैं वो बाद में आई और मूल मूर्तियां राजस्थान में हैं। क्यों? क्योंकि राधा रमण की मूर्ति इतनी छोटी है, केवल 12 इंच के, इसलिए आसानी से उनको छुपा पाए। लेकिन अन्य मूर्तियां काफी बड़े थे इसलिए उनको छुपाना काफी कठिन था, इसलिए भक्तों ने उनको वहां ले गए। इस प्रकार से राधा रमण मंदिर का निर्माण हुआ। और जब भी आप वृंदावन जाएंगे तो आपको अवश्य राधा रमण मंदिर में जाना चाहिए और वहां राधा रमण जी का दर्शन करना चाहिए। राधा रमण का अर्थ क्या होता है? ये भगवान कृष्ण का एक नाम है। थोड़े दिन पहले प्रतियोगिता हुई थी कृष्ण के नाम लिखने के लिए, ये नाम किसी ने लिखा, राधा रमण लिखा है। राधा रमण का नाम मतलब क्या है? राधा रमण, जो श्रीमती राधा रानी के संग में रमण करते हैं वो है राधा रमण। सुंदर नाम है राधा रमण, एक है ये कृष्ण का नाम है, इसलिए अगर राधा रानी साथ में हो तो राधा राधा रमण। तो ऐसे गोपाल भट्ट गोस्वामी ने अपने जी भर के राधा रमण की सेवा की, उनका श्रृंगार किया, उनको सजाया, उनकी उपासना की, उनको नाना प्रकार के सुंदर चीजें अर्पण किए और ऐसे अपने बड़े हृदय से संतुष्ट होकर वो सेवा करते रहे वृंदावन में। गोपाल भट्ट गोस्वामी बड़े विद्वान भी थे और जो जीव गोस्वामी ने षट संदर्भ लिखे थे, बड़े ग्रंथ लिखे थे, और उनकी सहायता काफी हद तक गोपाल भट्ट गोस्वामी ने भी की थी। और सनातन गोस्वामी ने जो हरिभक्ति विलास, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है वैष्णवों के लिए, इसका संपादन भी गोपाल भट्ट गोस्वामी ने किया था। इस प्रकार से गोपाल भट्ट गोस्वामी ने जो साहित्य के दृष्टि में भी उन्होंने काफी उनका योगदान रहा है। ठीक उसी समय एक भक्त वृंदावन आए जिनका नाम था श्रीनिवास, जो आगे चल के श्रीनिवास आचार्य बने। श्रीनिवास आचार्य ये भी भगवान कृष्ण के बड़े शुद्ध भक्त थे। बंगाल में ही उन्होंने दीक्षा ली थी, वो दीक्षा लेना चाहते थे चैतन्य महाप्रभु से, लेकिन नहीं ले पाए क्योंकि चैतन्य महाप्रभु अपने धाम चले गए। एक लंबी कथा है, जब श्रीनिवास आचार्य के बारे में चर्चा होगी तो उनकी जीवनी का वर्णन करेंगे, लेकिन संक्षेप में ये कहेंगे कि किसी न किसी तरह से श्रीनिवास आचार्य आ पहुंचे और उनको आदेश मिला था कि उन्हें गोपाल भट्ट गोस्वामी से दीक्षा लेनी थी। जब गोपाल भट्ट गोस्वामी के पास आए तो गोपाल भट्ट गोस्वामी बड़े प्रसन्न हुए उनको देखकर और सीधे राधा रमण के पास लेकर आए श्रीनिवास आचार्य को, और राधा रमण से कहने लगे कि हे राधा रमण, ये आज से आपका हो गया है, मेरी संपत्ति नहीं है, हालांकि मैं इसका गुरु होने वाला हूं, लेकिन वास्तव में यह आपकी संपत्ति है। तो मैं चाहता हूं कि ये मैं इसको आपका बढ़िया से बढ़िया सेवक बना सकूं और आजीवन भर ये आपकी सेवा करता रहे। और फिर एक सही दिवस पर उन्होंने दीक्षा दे दी श्रीनिवास आचार्य को, और उसके बाद श्रीनिवास को जीव गोस्वामी के हवाले कर दिया श्रीमद् भागवत सीखने के लिए। तो देखिए कितना सुंदर संबंध था सब वैष्णवों के बीच में। और इस प्रकार से श्रीनिवास आचार्य वहां रहे। उधर जीव गोस्वामी के पास और दो बड़े महान शिष्य आए थे जिनका नाम था नरोत्तम दास और श्यामानंद पंडित। और ये तीनों शिष्य जो हैं, श्यामानंद पंडित, नरोत्तम दास और श्रीनिवास आचार्य, बड़े घनिष्ठ मित्र बन गए और साथ में ही वो सेवा करते थे, पढ़ते थे। और गोपाल भट्ट गोस्वामी की आज्ञा के अनुसार भी श्रीनिवास आचार्य, जैसे कि चैतन्य महाप्रभु ने उनको आदेश दिया था, वो आगे चलकर गोस्वामियों के जो साहित्य हैं, उनकी किताब हैं, उनका वितरण करने के लिए आगे निकल पड़े। तो इस प्रकार से गोपाल भट्ट गोस्वामी ने के पास कई शिष्य आए। उनमें से एक शिष्य का नाम था गोपीनाथ पुजारी। गोपीनाथ पुजारी जो हैं, ये भी भगवान के बड़े शुद्ध भक्त थे। वो भी ब्रह्मचारी थे, विवाह नहीं करना चाहते थे, और गोपाल भट्ट गोस्वामी ने उनसे निवेदन भी नहीं किया विवाह करने के लिए। लेकिन गोपाल भट्ट गोस्वामी के मन में यह विचार था कि जैसे जैसे मेरा उम्र बढ़ते जा रहा है और गोपीनाथ पुजारी ये भी गृहस्थ नहीं होने वाले हैं, तो आगे चल के मेरे राधा रमन की सेवा कैसे होगी, कौन करेगा? फिर उन्होंने क्या किया कि गोपीनाथ पुजारी के जो भाई थे जिनका नाम था दामोदर दास, उनको दीक्षा दे दी। वो गृहस्थ थे और उन्हें राधा रमन जी की सेवा उनके हवाले सौंप दी और कहा कि आज से तुम्हारे जो वंशज हैं, तुम और तुम्हारे वंशज, ये राधा रमन की सेवा संभालेंगे। और आज तक दामोदर दास के वंशज इस मंदिर की सेवा को संभाल रहे हैं। हालांकि गोपाल भट्ट गोस्वामी इतने सरल तरीके से रहते थे, बड़े नम्र थे, लेकिन उनकी बुद्धि बड़ी तेज थी। और इस ढंग से उन्होंने राधा रमन मंदिर की सेवा की आयोजना की, इस ढंग से मैनेजमेंट कर दिया उन्होंने कि आज तक लोग इसको देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। बताया जाता है कि इन 450 या 500 सालों में आज ऐसा एक भी समय नहीं है जब राधा रमन का भोग चूक गया हो। या ऐसे कितने सारे राजा, व्यापारी, धनी लोग रहे जिन्होंने बहुत कुछ दान दिया है, गहने, सोना, चांदी वगैरह राधा रमन को उनकी सेवा के लिए। ऐसा कोई भी आइटम नहीं है जिसका चोरी हुआ है आज तक। सब कुछ इतने अच्छे ढंग से चल रहा है, इतने अच्छे सिस्टम बनाए, पद्धति बनाए गोपाल भट्ट गोस्वामी ने सेवा के लिए। आज भी अगर भगवान के गहने निकालने होते हैं तिजोरी से भगवान की सेवा के लिए, तो जो पुजारी हैं उनको किताब में साइन करना पड़ता है और फिर देने के समय वापस साइन करना पड़ता है। और तिजोरी के लिए 3 चाबियां हैं और तीनों चाबियां जो दामोदर दास के वंशज हैं, जो अलग अलग कुटुंब बन गए हैं, अलग अलग कुटुंबों के पास ये 3 चाबियां हैं। तो हर दिन जब भी तिजोरी खोली जाती है तीनों को एकत्र आना पड़ता है, फिर वो तिजोरी खोलते हैं, फिर अलग अलग जगह किताबों का साइनिंग होता है, सब दस्तखत करके सब ठीक ठाक सिस्टम से बड़े पद्धति से चलता है। शायद रिजर्व बैंक में भी ऐसा नहीं चलता होगा। इसलिए कोई चोरी नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल व्यवस्थित रूप से, सुव्यवस्थित रूप से चल रहा है आज भी। श्रील प्रभुपाद जी बताया करते थे कि सारे वृंदावन में राधा रमन मंदिर की तरह भगवान की अच्छे विग्रह की सेवा शायद कहीं भी नहीं हो रही होगी। इतनी बढ़िया, केवल पद्धति नहीं, केवल सिस्टम नहीं, लेकिन भक्ति भाव से भी। और वहां के जो पुजारी हैं वो भी श्रील प्रभुपाद को बहुत प्रेम करते थे, और वहां के जो पुजारी हैं वो इस्कॉन को भी, हमारी संस्था को भी बहुत करीब हमारे भक्तों को लेते हैं। और इस तरह से राधा रमन के मंदिर की सेवा बड़े उत्साह से आज भी चल रही है, और आज भी गोपाल भट्ट गोस्वामी की समाधि और चैतन्य महाप्रभु ने जो उनको भेंट दी थी वो चौकी, वो कॉपिन अब भी रखा हुआ है, आज भी जाकर आप देख सकते हैं जिस स्थान में वो दामोदर शीला ने अपने आप को राधा रमन के रूप में परिवर्तित किया उनके भजन कुटीर में, वो स्थान भी आज वहां है। तो अगर आप में से कोई वृंदावन जाएंगे तो अवश्य आपको राधा रमन मंदिर, गोपाल भट्ट गोस्वामी की समाधि और भजन कुटीर का दर्शन अवश्य करना चाहिए। गोपाल भट्ट गोस्वामी ने समाधि स्वीकार कर ली 1585 में, और फिर वो भगवान के धाम में लौटकर चले गए। गोपाल भट्ट गोस्वामी ये भी भगवान श्री कृष्ण के एक नित्य पार्षद हैं गोलोक वृंदावन से। जब भगवान आते हैं इस संसार में तो अपने शुद्ध भक्तों को साथ में लेकर आते हैं उनकी लीला में साथ देने के लिए, और ये जो व्यक्ति होते हैं कोई साधारण व्यक्ति नहीं होते। तो जैसे रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी इत्यादि भगवान के कृष्ण के नित्य पार्षद हैं गोलोक वृंदावन से, उसी तरह से गोपाल भट्ट गोस्वामी भी हैं। उनका मूल जो रूप है वो गोलोक वृंदावन में वो एक मंजरी का है, अनंग मंजरी, जो कि जो गोपियां हैं, जो सखी हैं राधा रानी की सेवा करने वाली, उनकी भी सेवक हैं। तो ये है वास्तव में गोपाल भट्ट गोस्वामी का थोड़े शब्दों में वर्णन। तो कल उनका तिरुभाव दिवस है। वैष्णवों का तिरुभाव वास्तव में असली तिरुभाव नहीं होता, क्योंकि अपने आध्यात्मिक रूप में ऐसे महान वैष्णव हमेशा रहते हैं। अगर हमने गोपाल भट्ट गोस्वामी के चरणों के प्रति प्रार्थना की तो गोलोक वृंदावन से गोपाल भट्ट गोस्वामी हमें आशीर्वाद दे सकते हैं। आध्यात्मिक शरीर के लिए, गोलोक वृंदावन में निवास करने वालों के लिए ये जो इतनी दूरी है ये कोई बंधन नहीं है। गोलोक वृंदावन इतना दूर है लेकिन फिर भी कोई बंधन नहीं, कोई अड़चन नहीं है। इसलिए हमें गोपाल भट्ट गोस्वामी के चरण कमलों में प्रार्थना करनी चाहिए कि वो भी हमारे हृदय में कृष्ण प्रेम का एक बूंद प्रदान करें, हमारे ऊपर ऐसी कृपा करें कि हमारे हृदय में जो भी अनर्थ हैं वो नष्ट हो जाएं और केवल हमारे भक्त, हमारे हृदय में कृष्ण प्रेम रह जाए। श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी की जय। श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी तिरुभाव दिवस की जय। गौ प्रेमानंदे। तो आपके कोई प्रश्न है, टीका टिप्पणी?
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम